ओम शांति। आज का स्लोगन क्या था? तीव्र पुरुषार्थ की चाहना है तो जहां चाहे वहां राह मिल जाती है। ये एक किसी स्टोरी की मॉरल होती थी। कौन सी स्टोरी की थी? वो स्कूल में पढ़ाई जाती थी, जहां चाह वहां राह। ये स्टोरी की मॉरल होती थी। कौन सी स्टोरी थी वो? थर्स्टी क्रो, वही था ना, प्यासा कौवा। हाँ, जिसको प्यास लगती है ना वो राह निकाल लेता है। तो इसी तरह अगर हम तीव्र पुरुषार्थ की प्यास है, चाहना है, तो रास्ते निकलाते हैं। लेकिन रास्ते कैसे निकालने हैं उसके लिए भी मेहनत तो करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये मार्ग डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है और सहज से सहज भी है। अर्थात अगर हमें किसी चीज का मेथड पता चल जाता है तो बहुत आसान है। अगर मेथड पता नहीं है तो जिंदगी भर लगे रहो, नहीं पास होंगे, है ना। भगवान को याद करने के लिए हमने कितने जन्म लगा दिए, लेकिन मेथड ही ठीक नहीं था तो कितने भटके, कितने दुख उठाए, कितने भक्ति पाठ पूजा किए, कितना भगवान से दूरियां बना ली, भगवान को कितनी गालियां भी निकाल दी। बाबा कहते तुम तो 84 लाख योनियों में कहा अपने को, लेकिन मुझे तो बख्शा ही नहीं, कण कण में कह दिया, अपनी तरफ से महिमा की। तो देखो भगवान को याद करने का हमको मेथड पता नहीं था, विधि पता नहीं थी, तो कितना कुछ हो गया, रास्ता भटक गए। लेकिन बाबा ने हम सबको अभी आकर कितना अच्छा रास्ता बताया है। कौन सा रास्ता सबसे सहज है? अपने को आत्मा समझ, मुझ बिंदु बाप को याद करो। ये सारे ज्ञान का सार है, है ना। तो बाबा कहते हैं सारे वेद शास्त्र पढ़े, वेद शास्त्र पढ़ के क्या क्या भटकते रहे, अभी सब भूल जाओ। तो इस सार में स्थित होने के लिए या अपने इस पुरुषार्थ को पुरुषार्थी मार्ग को सहज करने के लिए तीव्र पुरुषार्थ की जो चाहना है सभी को होती है। कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं है जिसको तीव्र पुरुषार्थ की चाहना नहीं होती है। लेकिन उस चाहना को या उस जो चाह है हमारी उसको सही मार्ग पर लाने के लिए कैसे कैसे हम अपना स्वयं को नए रास्ते निर्माण करने हैं, है ना। क्योंकि सबका कर्म क्षेत्र अपना अपना होता है, सभी की कल्चर अपना अपना है, सभी के घर में जो क्रियाकलाप हैं या संबंध संपर्क में सभी के अपने अपने अलग अलग हैं। इसलिए सभी को एक जैसा मेथड नहीं अप्लाई हो पाता है। जैसे मधुबन की दिनचर्या अपनी है, आप इसी दिनचर्या के अनुसार घर में चले तो वो थोड़ा क्या काफी डिफिकल्ट लगता है। वहां तो ऐसे सारे ट्रैफिक कंट्रोल से बजेंगे नहीं, वहां तो कोई कहेगा नहीं अमृत वेला शुद्ध पवन है, संगठित रूप से योग होगा नहीं, एक होगा ज्ञान में चलने वाला, बाकी सब टांग खींचने वाले होंगे। और यहाँ तो संग है, यहाँ तो सब कुछ सहज है। तो इसलिए हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। इसलिए जहां भी हम रहते हैं, चाहे घर में है या चाहे ऑफिस में या चाहे मधुबन में आते हैं, तो रोज ही अपनी दिनचर्या स्वयं ही निर्माण करनी है। यहां भी अगर हम रहते हैं दिनचर्या तो है, लेकिन यहां भी सबकी सेवाएं अपनी अपनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि यहां भी ट्रैफिक कंट्रोल अगर बचता है तो अगर ग्लोबल में अगर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो ऑपरेशन रोकेगा थोड़ा नहीं वो, कि मैं पहले ट्रैफिक कंट्रोल कर लूं बाद में ऑपरेशन करूंगा, ऐसा नहीं है। तो समय प्रमाण दिनचर्या भी बदलती है। इसलिए जिस भी स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान पर हम अपने अनुसार दिनचर्या स्वयं निर्माण करें, क्रिएट करें, ताकि हमारे पुरुषार्थ का जो मार्ग है बहुत सहज लगे, इसका आनंद ले सकें। क्योंकि आज ही बाबा ने कहा ना, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये केवल इस समय ही इसका तुम आनंद ले सकते हो, है ना। तो अगर हमको ब्राह्मण जीवन बड़ा सरल सुगम बहुत सहज इजी नेचर वाला बनाना है तो जिस स्थान पर हम रहते हैं पहले उस दिनचर्या उस स्थान को उस कर्म क्षेत्र को आसपास के संबंध संपर्क को अच्छी तरह पहले रीड करना है, उसको समझना है। ऐसा नहीं है हमको ये ज्ञान मिल गया और इसी को पकड़ के सबके ऊपर थोपने का है कि हमको इसी अनुसार चलना, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो ज्ञान है बाबा ने हमको सबको सुख देने के लिए दिया हुआ है, किसी को दुख देने के लिए नहीं दिया हुआ है। तो अगर हमको कोई घर में कोई काम के लिए कहता है और हम कह दें कि हमारा तो योग का टाइम है जी, या कोई सेवा के लिए कहता है हम कहते हैं अभी तो हमारा आश्रम में जाने का टाइम है, हमको मुरली मिस नहीं करनी है, घर में कोई बच्चा बीमार है, छोड़ देने मुझे तो मुरली सुनने जरूर जाना है, तो उल्टी डिसर्विस हो जाती है। तो कहां कहां हमको लचीलापन भी होना पड़ता है, क्योंकि ये जो सारा पुरुषार्थ है हमारे मन का है, बाहर से इस पुरुषार्थ का कोई बाहर से ताल्लुक नहीं है। हमारी आंतरिक स्थिति को परिवर्तन करने के लिए पुरुषार्थ है, अंदरूनी अवस्था को मजबूत करने के लिए पुरुषार्थ है। तो हम इस पुरुषार्थ को दिन प्रतिदिन कैसे मजबूत बनाएं, इसलिए स्वयं की जांच करनी है। और हर आत्मा का जो प्रश्न होता है उसका उत्तर भी उसी के पास होता है। भले हम अनेक लोगों से पूछें, अनेक पुरुषार्थियों से पूछें या किसी से पूछते रहें, लेकिन जो उत्तर हमको पता होगा वो दूसरों को नहीं पता होगा, क्योंकि उस समस्या का समाधान या वो समस्या मैंने कैसे क्रिएट की है, वो समस्या किस चीज किस से है, उसका समाधान भी हमारे पास ही है। हाँ, दूसरों से थोड़ा बहुत इशारा तो मिलेगा, लेकिन उस समस्या से निकलना हमें पड़ेगा, क्योंकि बीज हमने किस समय बोया, किस तरीके से उसको पानी दिया, कैसे कैसे वो बीज का निर्माण हुआ, वृक्ष बढ़ गया, विस्तार पड़ गया, और वो कितने लोगों से संपर्क में चला गया, उसका सामने वाले को पता नहीं है। भले हम बताएंगे भी नहीं, लेकिन उस समस्या के समाधान का वास्तव में स्वयं को ही पता होता है। तो जो भी समस्याएं आती हैं, सब समस्याओं का समाधान बाबा हमको बताते हैं। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान मुरली में ना हो। लेकिन अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो ये भी सिद्ध करता है हमारा ज्ञान के प्रति ध्यान कम है। दूसरों से बार बार अगर प्रश्न पूछते तो हैं, बहुत माताएं भी पूछते हैं, भाई पूछते हैं तो ऐसा नहीं है, पूछना तो चाहिए। बाबा ने कहा चर्चा करनी है। चार दिन पहले बताया था ना कि दोपहर को भोजन करने के बाद क्या करो, आपस में चर्चा करो, ज्ञान की चर्चा। तो ज्ञान की चर्चा करना अनिवार्य है, आवश्यक है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो हम उस ज्ञान की चर्चा का हमको मजा भी तब आएगा जो हमको ज्ञान दिया जाता है उस ज्ञान को हम अच्छी तरह समझेंगे, जानेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, उस पर चलेंगे, तो हमको चर्चा करने का मजा भी आएगा। नहीं तो चर्चा करने का मजा नहीं आएगा। जो सुनाने वाला मानो उसको सारा याद भी है ज्ञान, और सुनने वाले को है नहीं है, तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना। जैसे आज की मुरली में बहुत सारी बातें थी, है ना। आज की मुरली में जो ये स्लोगन बताया कि जहां तीव्र पुरुषार्थ की चाह है तो रास्ते निकलेंगे, तो आज की मुरली में बहुत सारे रास्ते हैं इस पुरुषार्थ को सहज करने के लिए। कौन कौन से रास्ते हैं? सबसे पहली लाइन में क्या बताया बाबा ने? कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को क्या समझो? ट्रस्टी समझो, ट्रस्टी। तो ये ट्रस्टीशिप एक रास्ता है तीव्र पुरुषार्थ को बढ़ाने का। तो क्या हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में, हमारे मन जो है वो ट्रस्टी भाव जैसा रहता है, या उस कर्म क्षेत्र पर पूरा कर्म कॉन्शियस करके हम कर्म कर रहे हैं? फिर वो अगर ट्रस्टीपन का भाव हमारे अंदर नहीं है तो वो कर्म हमें प्रभावित करेगा। अगर हम वो कर्म हम अच्छा करते हैं तो वो अच्छा कर्म को खुशी देगा। अगर उस कर्म में असफलता मिलती है तो वो ही कर्म को दुखी कर देगा। हाँ, जब हमको मन में रहेगा कि मैं ट्रस्टी हूं, निमित हूं, कर्ण करावन हार करा रहा है, तो वो कर्म हमको अप्रभावित रखेगा, प्रभावित नहीं करेगा, वो कर्म हमको तंग नहीं करेगा, क्योंकि हमने बाबा को साथ रख के, उसके महावाक्यों को साथ रख के कर्म किया है। उसमें चाहे सफलता मिल रही है, असफलता मिल रही है, दोनों मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बाबा साथ है तो हर कर्म में सफलता मिलेगी। कल की मुरली में था ना, अब बाबा का सेंटर है, वहां भी आग लगी। अब लोग तो कहेंगे भगवान का करते हो, कैसे आग लगी तो? अब वहां सफलता थोड़ा कहेंगे तो। लेकिन उसमें बाबा ने कल्याण बताया कि उसके पीछे भी कल्याण समाया हुआ है। एक गया लाख पाया। तो ऐसा नहीं हर कर्म हमको सफलता मिली, लेकिन उस असफलता में भी हमको फिर बाद में जो उसके दूरगामी परिणाम होंगे वो उसमें अवश्य सफलता समाई होगी। लेकिन अगर हम उसको ट्रस्टी भाव से करते हैं तो कर्ण करावन हार बाबा करा रहा है, वो हमारा साथी है, उसके साथ हम कर्म कर रहे हैं, तो वो उसमें उस कर्म में चाहे सफलता हो या असफलता हो वो कर्म हमको प्रभावित नहीं करेगा, अप्रभावित रहेंगे। नहीं तो वो ही कर्म की सारी गूंज हमारे मन बुद्धि में गूंजती रहेगी, वो ही कर्म हमको खींच के रखेगा, वो ही कर्म फिर धीरे धीरे विकर्म बन जाएगा, है ना। विकर्म कब होते हैं हमारे से? विकर्म कब होते हैं? जब देव आने, हाँ, चंचलता है, तो विकर्म तब होते हैं जब देव आने, अर्थात हमें विस्मृति है तब विकर्म होते हैं। अगर हमें स्मृति है तो विकर्म हो ही नहीं सकते। सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। पाप कर्म होते हैं जब अंधकार होता है, अंधकार अर्थात विस्मृति, विस्मृति अर्थात अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं, अज्ञान की चादर ओढ़ी हुई है ना। उस दिन तीन प्रकार के बच्चे बाबा ने बताए, कौन से? एक थे जो अलबेलेपन की चादर ओढ़ के सोए हुए हैं, कोई बात नहीं देख लेंगे बाद में, अभी तो टाइम बहुत पड़ा है। और दूसरे बच्चे कौन से थे? जो आलस्य वाले, थोड़ा देख रहे थे बाजू वाला भी सोया हुआ है, कोई बात नहीं, ये भी ऐसे करता मैं भी ऐसे, तो क्या फर्क पड़ता है। और तीसरे थे जो अचल अडोल थे, हाँ। और चौथे, चौथे नहीं बताया? अच्छा ठीक है, नहीं बताया। तो ऐसा नहीं है हमको तीन ही बताया, तो तीन ही चिंतन करना, आगे हमको और सोचना है, और भी हो सकते हैं कोई ना कोई, है ना। तो हम कौन से बच्चे हैं? वो पहले प्रकार के, दूसरे प्रकार के, या तीसरे प्रकार के? तो हमको अगर स्मृति रहती है तो हमारे से कोई पाप कर्म नहीं होगा। तो कर्मों के ऊपर हमको ध्यान देना है, हमारा सोचना कर्म ये नहीं है कि खाली हम सेवा में, वो ही कर्म है। हमारा देखना भी कर्म है, हमारा बोलना भी कर्म है, हमारा सोना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, चलना फिरना भी कर्म है। कर्म केवल वो ही नहीं है जो हम सेवा कर रहे हैं, वो तो है ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो हमारी दुआओं के खाते को भस्म कर देते हैं, जो विकर्म बन जाते हैं और जो हमको पता नहीं चलता है। सारे दिन हम अच्छी तरह सेवा, पूरा जोर, 200 नाखूनों का जोर लगाकर सेवा कर रहे हैं, और फिर भी मन के ऊपर बोझ है कुछ ना कुछ। तो सिद्ध करता है कि हमारे और सूक्ष्म में विकर्म हमारे बनते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले जन्मों के विकर्म तो बाबा कहते जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण बनने के बाद विकर्म हो रहे हैं उनके ऊपर हमारा ध्यान कम हो जाता है। क्योंकि बाहर से तो हमारा बदलाव हो गया, सेवा में लग गए, बाबा का हम परिचय भी दे रहे हैं, लोगों को ज्ञान सुना रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, या खूब यज्ञ सेवा कर रहे हैं, हड्डी सेवा कर रहे हैं, आश्रम में स्थूल सेवा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ विघ्न आ रहे हैं, हाँ, विघ्न आना भी, बाबा ने कल कहा था विघ्न आए अर्थात अनुभव मिला, अनुभव की डिग्री से आगे बढ़े। लेकिन बार बार एक ही विघ्न से हम दुखी हो रहे हैं या उस पर जीत नहीं पा रहे हैं, तो सिद्ध करता है कहीं ना कहीं विकर्म हो रहे हैं, अर्थात हम विस्मृति की नींद में सोए हुए हैं, विस्मृति की चादर ओढ़ी हुई है। तो विस्मृति किस चीज की है और स्मृति किस चीज की है? विस्मृति अर्थात सारा ज्ञान हमको विस्मृत हुआ पड़ा है। बाबा ने अनेकों स्मृतियां हम सब बच्चों को दी हैं, तो क्या वो स्मृतियां हमारे आंतरिक मन में रखी हैं या कहीं डायरियों में नोट रहेगी? तो मन की डायरी में वो स्मृतियां हमेशा बार बार रिवाइज करते रहना है। ये जीवन ही जैसे एक खुली किताब बन जाए। किताब कितने लोगों की सेवा करती है? तो बाबा ने कहा तुम चलते फिरते लाइब्रेरी हो, चलते फिरते प्रयोगशाला हो, तुम बच्चों से ही साक्षात्कार होगा। खाली डायरी में बंद करके हमने ज्ञान रखा, उससे साक्षात थोड़े नहीं होगा, डायरी थोड़ी साक्षात्कार कराएगी। हमारा जीवन ही एक डायरी की तरह बन जाए, हमारा जीवन ही एक चलती फिरती प्रयोगशाला बन जाए। तो जीवन में धीरे धीरे, लेकिन उसके लिए उतना अटेंशन रखना पड़ेगा, उतनी स्वयं की जांच करनी पड़ेगी, उतना स्वयं के ऊपर ज्ञान की जो बारीकियां हैं, ज्ञान की गहराई में जाना पड़ेगा धीरे धीरे। और ये एक दिन की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमको सारा ज्ञान एकदम सारा समझ में आ जाएगा और आज ही हमारी बहुत ऊंची अवस्था हो जाए। थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलता है, उस थोड़े थोड़े ज्ञान को अमल में लाना है। ऐसा नहीं कि आज हमने मुरली सुनी तो सारी मुरली हमारे से आज ही हो जानी चाहिए, ऐसा थोड़ा होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन होता क्या है, हमारे अंदर से कैसी मंशा होती है कि जो कुछ है ना आज ही सारा पकड़ लें, आज ही हमारी स्थिति ना सबसे आगे चली जाए, ऐसा थोड़ा होगा। ये तो धीरे 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 करते करते होगा। अब स्कूल में 10 क्लास करनी है तो बच्चा पहले ही थोड़ा सोचेगा मैं सीधा 10वीं में बैठ जाऊं जाके। जिन्होंने अपनी तपस्या के बल से, सेवा के बल से, दुआओं के बल से अपनी अवस्था को जमाया है, इतनी ऊंची मंजिल पर पहुंचाया है, तो टाइम लगा ना उसमें। तो ये भी हमारा जो ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण जीवन की ऊंची मंजिल पर जाने के लिए कदम कदम पर अटेंशन रखने की जरूरत है। बिना अटेंशन के ये होने वाला नहीं है। तो तीव्र पुरुषार्थ का सबसे पहले जो रास्ता है, स्वयं के ऊपर अटेंशन। किस किस चीज के ऊपर अटेंशन? फिर उसमें बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, हमारे बोल के ऊपर अटेंशन। क्योंकि कई बार होता है हम ब्राह्मणों के मुख से जो बोल है, वो जो शूद्र जीवन के हैं, वो भी अभी जैसे कुंडली मारकर बैठे हुए, निकले नहीं अभी भी। बहुत सारे बोल हैं जो क्षेत्रीय भाषा में निकल रहे हैं या लौकिकता वाले हैं, जो हमारे मुख से निकलने नहीं चाहिए। छोटी छोटी गालियां निकल रही हैं जो हमको हमारे मुख से नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन हमको बोलने वाले को पता भी नहीं चल पा रहा कि ये गाली है। और वो ही सूक्ष्म रूप से हमारे विकर्म बनते जा रहे हैं, जो हमारे लिए रोड़ा बने हुए हैं, हमारे पुरुषार्थ में बाधक बने हुए हैं। तो अटेंशन देखने के पर भी अटेंशन, जो बाबा ने बताया आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। तो सारे दिन में क्या हम आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं? जैसे काले बताया कि बच्चे भाई बहन की दृष्टि में बाज नहीं आते हैं, उससे ऊपर भी भाई भाई की है। तो जब भाई भाई की दृष्टि है तो देख ही बात ही नहीं रही वहां, तो क्या हमारा उतना स्वयं की ओर अटेंशन रहता है? अगर अटेंशन नहीं है तो चाहे वो बहन हो या भाई हो, उनकी विशेषताओं को देखकर प्रभावित होंगे, उनके गुणों को देखकर भी प्रभावित होंगे, उनके अवगुणों को देख कर प्रभावित होंगे। और अगर हमने भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास कर लिया है, नेचुरल होता जा रहा है, तो चाहे किसी में अवगुण दिखाई दे रहे हैं चाहे गुण दिखाई, तो दोनों देंगे। लेकिन उन गुणों को देखते हुए भी और अवगुणों को भी देखते हुए हम अप्रभावित रहेंगे। तो क्या हमारा स्वयं की आत्मिक दृष्टि पर उतना पक्का अभ्यास होता जा रहा है दिन प्रतिदिन? तो ये स्वयं के ऊपर अटेंशन रखनी है, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास कूट कूट कर भरना आज की मुरली में है, ताकि तुम्हें तुम जैसे अशरीरी अशरीरी, वो जो सेंटेंस है मीठे प्रश्नोत्तर में था, देखो क्या था उसमें, अशरीरी बन जाओ नहीं नहीं एक सेंटेंस है, बाबा जैसे उस तरीके से कह रहे हैं हमको संबोधन करेंगे, तुम बच्चे शरीर समझ कर ही बैठे हुए हो। प्रश्नोत्तर में दूसरा जैसा सेंटेंस था उसमें बाबा के शरीर से मोह, बाबा ने कहा इस शरीर से बिल्कुल मोह निकल जाना चाहिए, बैगर से प्रिंस आत्मा। हाँ ये था एक्यूरेट सेंटेंस के आत्मा अशरीरी बन जाए। अब बताओ आत्मा तो है ही अशरीरी, सेंटेंस कितना जबरदस्त है। अर्थात हम जो आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं, शरीर समझकर आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं। बाबा ने कहा आत्मा अशरीरी बन जाए, इसका अर्थ क्या है? वो तो है ही अशरीरी, तो माना आत्मा को हमने शरीर बना दिया हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा जो बच्चे अभ्यास करते हैं तो वे क्या कहेंगे कि फलाने की आत्मा जा रही है, फलाने की आत्मा सर्विस पर जाती है। तो हमने बाबा ने कहा आत्मा अशरीरी बन जाए, कितनी बड़ी बात है ये। तो हमारा आत्मिक दृष्टि का अभ्यास कितना पक्का है? तो स्वयं के ऊपर अटेंशन रखनी है, जांच करनी है, चेकिंग करनी है। एक तो दृष्टि की होगी आत्मिक दृष्टि, दूसरा आत्मिक स्मृति। दृष्टि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी आत्मिक स्मृति। अगर हमारी आंखें चंचल होती हैं तो सिद्ध करता है हमने अंदर से संकल्प शक्ति को परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि दृष्टि भी हमारी बाद में चंचल होती है वास्तव में। अगर हमने पक्का अभ्यास किया हुआ है, अंदर अंदर घोट घोट के भरा हुआ है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा शुद्ध शुद्ध है, शांत है, पवित्र है, परम धाम आने वाली है, सभी आत्माएं हैं, अगर हमारा अंदर से वो परिवर्तन हुआ है तो ये आंखें चलाएं मन नहीं होंगी। तो आंखों से भी पहले हमारा संकल्प से परिवर्तन, स्मृति का परिवर्तन। तो क्या हमने स्मृति में पक्का किया कि सचमुच हम आत्मा हैं? ये तो जैसे शरीर हमको एक सेवार्थ मिला, बाबा ने कहा ना अपनापन मिट जाए, संडे की मुरली में था ना, बाबा अपन मिट जाए। कौन से संडे की? पिछले इस संडे की, पिछले संडे की था, इसमें नहीं था, उससे ही पिछले था, नए छासी में था। तो पिछले संडे में था अपनापन मिट जाए, बाबापन आ जाए। तो माना जैसा बाबा है वैसे मैं आत्मा हूं। तो कितनी बड़ी ऊंची ये मंजिल है, और बाबा हमको कितने सरल शब्दों में कह रहे कि अपनापन मिट जाए, बाबापन आ जाए। आज बाबा ने कहा इस बाबा का, ब्रह्मा बाबा का पैसे में बिल्कुल भी मोह नहीं है, व्यक्ति वस्तु सारा कुछ दे दिया एकदम, उसमें बिल्कुल भी मोह नहीं गया। तो कितना ही अपनापन बाबा में जो खत्म हो गया और बाबापन ही आ गया। तो स्मृति का भी हमारा परिवर्तन, अटेंशन उसके ऊपर भी, हमारी दृष्टि के ऊपर अटेंशन, हमारे बोल के ऊपर, हमारे कर्म के ऊपर, हम सुन क्या रहे हैं या हम पढ़ क्या रहे हैं या हम देख क्या रहे हैं। एक तो आत्मिक स्मृति का अभ्यास, दूसरा क्योंकि माया अनेक रूपों से आती है, बहुरूपी है माया, तो अनेक रूप से माया अटैक करेगी। बाबा ने कहा जितना तुम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे माया के भी अलग अलग राय रूप आपके ऊपर अटैक करेंगे। हाँ, किसको शाली बनाएगी? तो माया के अनेक राय रूप है, उनको भी समझना है। माया भी सफेद कपड़ों में आएगी, बैज लगा के आएगी, है ना, एक कुंभकर्ण का चित्र, उसको बैज पड़ा हुआ है। तो उसी तरह हम ही तो नहीं कुंभकर्ण बने, वो भी चेक करना है। ये नहीं सोचना मैं तो अच्छा और सामने वाला ऐसा है। स्वयं के ऊपर ही मैं ही माया के अनेक रूपों को तो धारण करके बैठा हूं। हजार भुजाओं वाला बाप शत्रछाया बनकर हमारे ऊपर है या माया की शत्रछाया हमारे ऊपर है? दृष्टि से माया है या स्मृति से माया है, कर्मों से माया है, बोल से माया है, समन संपर्क से माया है, तो कितना वो हमारा ये इस स्वयं के ऊपर अटेंशन चाहिए। तो ये तीव्र पुरुषार्थ के रास्ते सरल होंगे, नहीं तो रास्ते कठिन लगेंगे, नहीं तो फिर प्रश्न पूछते रहेंगे बार बार, ऐसे करना है, वैसे करना है, कैसे करना है। और कई बार ये भी देखा है जो कई प्रश्न पूछते हैं वो साथ साथ में उत्तर भी बताते हैं, सामने वाले को सुनते नहीं है। बोले हम ये करते तो हैं, ऐसे भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, लेकिन फिर भी अगली बार समस्या फिर वही रहती है। तो उसकी हम गहराई में नहीं गए हैं, उसको हमने जांचा नहीं है, समझा नहीं है, परखा नहीं है, ऊपर ऊपर से हम तैर रहे हैं। तो सबसे पहली बात अटेंशन स्वयं के ऊपर, अटेंशन और चेकिंग का पहरा। बाबा ने कहा दो पहरेदार स्वयं हमेशा हमारे आसपास खड़े रहने चाहिए, दूसरों की चेकिंग नहीं करने लग जाना, स्वयं की चेकिंग करनी है। अटेंशन दूसरों पर रखना, स्वयं के ऊपर अटेंशन रखना है। और अगर अटेंशन नहीं किया तो टेंशन तो पहले से ही है। तो अटेंशन स्वयं के कर्मों पर। दूसरा है, जो भी हम मुरली सुनते हैं अगर इस ब्राह्मण में तीव्र पुरुषार्थ के जो रास्ते हैं उनको सरल बनाना है, तो जो भी हम ज्ञान सुनते हैं सुनको उसको छोड़ नहीं देना है, उसको रिवाइज करना है बार बार। चाहे वो संडे की मुरली है, 10 दिन पहले की है, कोई भी एक मुरली अच्छी तरह से, 7 दिन में जो संडे की एक ही मुरली आती है उसी को बार बार रिवाइज करना है। जैसे गए संडे की है, जो कल क्लास हुई उसमें 14 बातें बताई थी, कौन कौन सी? एक बल एक भरोसा, नहीं सिर सिस्टमैटिकली बताओ बाबा कौन था, इधर के उधर नहीं करने के। सबसे पहले कौन से बताए थे? एक बल एक भरोसा और हिमते बच्चे मध्य बाप, तीसरा उल्लास, चौथा नहीं नथिंग न्यू उधर वाला है सहयोगी, चौथा सहयोगी, पांचवा मास्टर विदाता, मास्टर बरदाता, मास्टर सागर, छठा इच्छा मात्र विद्या, सातवा अखंड योगी, अखंड महादानी। तो ये 7 इस तरफ के थे। इसके जो पहले 7 बताए थे वो है अचल अडोल, दूसरा नथिंग न्यू, तीसरा रिहर्सल, चौथा बाबा, पांचवा बेफिक्र वाशा और छठा फिक्र वाला वाशा, एक खोया लाख पाया और सातवा अनुभव की डिग्री E=D। तो ये 7 बातें हैं, है ना। और उसके पिछले संडे की मुरली में क्या था? वैराग्य की। कितनी सारी बातें वैराग्य की बताई थी? 5 वेद के वैराग्य थे। कौन कौन से? हाँ, घर से बेघर, इस देहवान से भी बेघर, और हाँ साधनों के वशीभूत नहीं होना है, तीसरा उड़ता योगी, चौथा बेहद बोल सेवा कर्म में बेहद, पांचवा अपनापन मिट जाए और बाबापन आ जाए। तो ये 5 थे। और उससे पिछले संडे की जैसे मानो अगर हम लक्ष्य और लक्षण, वो था लक्ष्य और लक्षण को सब सेवा स्वार्थ की वजह सेवार्थ में लगाओ, तो ये था। तो उसमें क्या बताया, जैसे देखो मान लो हमने 4 महीने पहले हमको 10,000 मिला, फिर 12,000 मिला, 15,000 मिला, हमको भूलता है वो? तो ये क्यों भूल जाता है? ये तो पद्मों की कमाई है, अनगिनत है, माला माल करने वाला बाबा है, तो ये कैसे भूल जाता है? फिर कहते जी हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता ही नहीं है, होगा कैसे? जो विनाशी चीज है उसको हम याद रखते हैं, वो दिखता नहीं है। ये हाथ में आता है ऐसे ना। ये हाथ में आने वाला तो गड़बड़ कर रहा है। हाँ, तो उसमें कौन सा, उसमें बाबा ने त्रिमूर्ति मिलन बताया था एक, भले सारी बातें कुछ कुछ तो याद रहनी चाहिए ना। त्रिमूर्ति मिलन कौन कौन सा? जो ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। तो ज्ञान चंद्रमा क्या करता है और ज्ञान, हाँ, ज्ञान सूर्य शक्तियों का वरदान देता है, ज्ञान चंद्रमा स्नेह का वरदान देता है, और ज्ञान सितारे कौन सा वरदान देते हैं? अच्छा, लेते हैं वो, ठीक है। तो ज्ञान सितारे जैसे वो वरदान ले रहे हैं, है ना, ये विजन क्रिएट करना है मुरली को, जहां तक हो सके उसको योग में परिवर्तन करना है, तो वो धीरे धीरे याद रहेगी। और उन दो वरदान से क्या होता है, जब बाबा से ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा से हमको दो वरदान मिलते हैं तो क्या क्या, कौन कौन सी बातें होती हैं? एक तो लवली बन जाते हैं, और दूसरा लाइट हाउस माइट हाउस बन जाते हैं, तीसरा सफलता मिलती है, क्योंकि बाबा ने कहा तुम सफलता का जैसे मंत्र तुमको मिल गया है, सफलता की चाबी मिल गई, तुम संदेश देने के लिए जा रहे हो। उसमें दादियां और जगदीश भाई गए थे संदेश देने के लिए विदेश में, तो बाबा ने जैसे उनको सफलता का मंत्र दिया था, अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसका एक कारण बताया कौन सा, कि सेवा अर्थ के बजाय स्वार्थ आ जाता है, और सुर स्वार्थ से क्या क्या होता है फिर, मैंपन आता है और है? इच्छाएं बढ़ती है। और बाबा ने कहा था अगर वो स्वार्थ है तो हंगामे होते हैं, स्वार्थ के कारण ही हलचल होती है, कला क्लेश होता है, तो हमको संस्कार टकराव हो जाती है, डिशम डिशम हो जाती है, तो बॉक्सिंग हो जाती है ना, करना माया की बॉक्सिंग, और माया हमको रहती है क्योंकि हम स्वार्थ पकड़ के रखा हुआ है, तो वो याद करना है। और क्या बताया था उस मुरली में? ये तो हमारी खुराक है, अब बताओ ये हम खाएंगे नहीं, आगे दौड़ पीछे चौड़, क्योंकि कापी पेंसिल हम लेके बैठते सामने वाला क्या सुनाएगा, आज नई बात सुनाएंगे, और जो पुरानी बात है उनका क्या होगा? बाबा कहते नया नाव दिन पुराना साव दिन, जो हमारे पास पुराना ज्ञान है इतना, बाबा की मुरलियां ढेर सारी हैं, उसको पढ़ना अच्छी तरह से। ये मुरली हमारा दोस्त है, हमारे ऑक्सीजन है जैसे, अगर वो ही हमारे साथ नहीं रहेगा तो हमारे प्राणों का क्या हाल होगा, मर मर के जीते रहेंगे फिर। एक है जीते जी मरना, कल था ना आज की, आप मोहे मर गई दुनिया, ये है ऊंची मंजिल। हाँ, तो वो हम कितना मर रहे हैं इस विस्मृति से। तो पुराना ज्ञान हमारा कोई भी है जो हम सुनते हैं उसको बार बार पढ़ना है, नहीं ऐसे नहीं कल वाली मुरली आई पढ़ना, तो उसको भी टेंशन है, लेकिन जो पीछे हमने डायरियां रखी हैं, अच्छे अच्छे नोट्स पॉइंट किए हैं, कल की मुरली शायद आने वाली मुरली, उसमें मैंने कहा कि अच्छे अच्छे पॉइंट बच्चे नोट करते तो उनको बार बार देखना चाहिए। कमाई हमने की है और सारी दुकान उसमें बंद करके रख दी है और हम खोल के देखे नहीं तो खुशी रहेगी? तो हमारे पास करोड़ों रुपये अरबों रुपया और सारा बैंक में जमा है और हमको याद ही नहीं है, तो जीवन में कैसा रहेगा? चेहरे पर जैसे हमारे 12 बजे होंगे, हमको याद तो रहना चाहिए हमारे पास है क्या क्या, कितनी प्राप्तियां, अविनाशी प्राप्तियों से बारह भंडारा मरा भरा हुआ है या ऐसे खाली पड़ा हुआ है, तो बार बार वो देखना है जो भी डायरियां हैं। इसलिए बाबा कहते कच्छ में हमेशा कुर्म चाहिए, अर्थात बगल में किताब चाहिए हमेशा ही। तो ये वाणियां हमारी सच्ची दोस्त है, रास्ता दिखाने वाली है, उनसे हमारा प्यार होना चाहिए। मुरली लेके नाचना चाहिए बंद कमरा में, जैसे मेरी चिट्ठी आई है आज, तो बाबा की तरह नहीं नाच सकते तो कम से कम चिट्ठी लेके तो नाचो, जैसे बाबा इसी हॉल में नाचते थे, मिचनू बनूंगा, तो कम से कम गोल्ड स्टूडेंट बन गए। बाबा ने हमारी इतनी लाइफ अच्छी सुधार दी है, हमारे जीवन में खुशी वर्दी सच्ची खुशी क्या होती है अभी हमको पता चला है, पहले कौन सी खुशी थी हमको? अल्पकाल की खुशी थी, अल्पकाल के सुखों के पीछे भागे हुए थे, कितने प्रकार के दुख थे जो हमें यमराज की तरह चिपके हुए थे हमारे साथ, सबको बाबा ने उन सबसे हमको मुक्त कर दिया। आई बाबा ने बताया ना तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, किससे? कौन से? ठीक बोला नहीं बोला? अच्छा ठीक है फिर। तो जीवन मुक्ति कैसे मिलती है? एक शुभ मंत्र से मिलती है। आई बाबा ने बोला ना तुमको शुभ मंत्र से जीवन मुक्ति मिलती है, कौन सा शुभ मंत्र? उसमें था नहीं कोई भी, मुरली में कोई नहीं था। तो मन माना भाव मामे कम याद करो, ये सारे शुभ मंत्री हैं। उसमें उसमें था कि धोबी घर धोबी के घर से गई छू, है ना, ये कोई एक कहानी है। शायद धोबी के पास गधा था, फिर वहां एक शेर आया, तो कुछ ऐसी कहानी है। फिर शेर वो सुनकर डर गया, वो फिर वो परमानेंट शेर वहां से चला गया, पता नहीं कुछ ऐसी कहानी है वो। तो शुभ मंत्र बाबा देते हैं, तो ये हमको मंत्र याद रहता है, नहीं तो माया के मंत्र हम हमारी तरफ अपना बार करते रहेंगे। तो जो भी हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, इसको खुशी खुशी स्वीकार करना है, पढ़ना है, अमल में लाना है, उसको देख के खुश होना है। पुरानी डायरियां पुराने पन्ने खोल के, या वो अव्यक्त वाणियां, इतने अच्छे अच्छे महावाक्य हैं, उसको कहां कहां हमने अंडरलाइन किया हुआ है। जब से ज्ञान में चलता है कोई भी, तो सबको बहुत नशा होता है, बहुत खुशी होती। क्यों? क्योंकि उसमें बाबा पूरा हाथ पकड़ लेता है और इतनी मदद मिलती है, बात मत पूछो। और हम उस समय लोगों से बड़ा बड़ा पंगा भी ले लेते हैं, लोगों से माना घर वालों से, अपने घर वालों से, कोई कुछ भी हो जाए, सब दुनिया एक तरफ, हम एक तरफ, माना भगवान हमारे साथ में, कितना नशा चढ़ता है। और धीरे 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 क्या होता है, भगवान एक तरफ, हम एक तरफ हो जाते हैं। एक छोटा सा सत्य घटना है, एक गुजरात से भाई आता था, छोटा बच्चा, अभी थोड़ा बड़ा हो गया, अभी मैं सुनता हूँ 12वीं में हो गया वो, तो उसकी मम्मी भी आती थी, वो भी आता था, 5-6 साल पहले की बात है, अभी भी आया था 5-6 दिन में, सेवा में आया था, चला गया वो। तो देखो बाबा पर कितना निश्चय, अब छोटा बच्चा तो रात को बिस्तर में सुसु कर देता होगा, अब हो जाता बच्चों से तो क्या करें, तो घर वाले बहुत तंग हो गए, माँ बहुत तंग हुई, तो जहां भी उसको सलाह, उसको सुसु हो जाता, बताता भी नहीं वो, क्या करे, वो भी तंग हो गया, 8-9 साल हो गए, बड़ा भी हो गया, बड़ी प्रॉब्लम होगी उसको, बहुत सारा इलाज कराया डॉक्टरों से भी, तो बड़े दुखी हो गए माँ बाप भी। अब बच्चा बेचारा दुखी, मुझे बार बार सब लोग क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, अब वो बाबा का ज्ञान भी सुनने आता था, तो उसने एक बार बाबा को धमकी दे दी, अगर आज रात को बाबा के कमरे में जाके, अगर आज रात को सुसु बंद नहीं हुआ तो तुम अपनी तरफ, मैं अपनी तरफ, और उसके बाद बंद हो गया। देखो बाबा कैसे मदद करता है छोटी छोटी बातों में। अभी आया था 4-5 दिन, मैं बोला अभी क्या, बोला सब ठीक ठाक है अभी। तो बाबा की मदद रहती है। और एक बार अनुभव सुनाया, हमने पहले भी सुनाया था कि बाबा सचमुच हमारे अंग संग है, ऐसा नहीं हम सोचे कि बाबा नहीं, हमारे अंग संग ही घूम रहा है सचमुच। हम लोग कम अनुभव करते हैं, जो बाहर से आते हैं वो ज्यादा अनुभव करते हैं। ये भी एक सत्य घटना है, पहले भी हमने सुनाई थी, ये भी 6-7 साल पहले की है। तो हमें एक हमारी टीचर मैम ने फोन किया था कि एक फैमिली आ रही है, उनको आप थोड़ा इधर घुमा देना। तो हमने बोला ठीक है घुमा देंगे। तो उनको एकोमोडेशन की व्यवस्था थी इधर की हुई, तो माँ थी, बेटी थी और दामाद, मतलब बेटी के घर वाला, 3 लोग आए थे वो। तो माँ ज्ञान में चलती थी, बेटी भी थोड़ी थोड़ी ज्ञान में चलती थी, फिर वो माँ बेटी और दामाद आ गई, और उनके अपना कोई इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री का काम था। तो जब वो यहाँ पहुंचे तो जो भाई था ना, वो थोड़ा बहुत अहम वाला था, वो मानता कम था इस बात को, तो और अच्छी गाड़ी लेके आया वो, एक BMW कोई नई महंगी गाड़ी होती है, 25-30 लाख की गाड़ी। तो उसमें आया यहाँ दिल्ली से आया इधर मधुबन में, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट किया, वहां हमको सेवा, जो हम सेवा में रहते हैं वहां ऑफिस है, तो वहां बाहर आके खड़ा हो गया। तो वो तो उतरे नहीं गाड़ी से, बेटी और माँ तो उतरा है, बोला मैं तो इधर नहीं रहूंगा, आज समय नहीं रहूंगा, मैं तो होटल में रहूंगा, इसी होटल में। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आप चले जाओ, कम से कम थोड़ा कमरे में सामान रख दो, थोड़ा हाथ मुंह तुलाई कर लो, भोजन, बोला नहीं मैं भोजन नहीं करना कुछ भी। तो खैर जी, हमने बड़ा विनम्रतापूर्वक से उसको बोला कि आप थोड़ा तो पानी वानी पी लो। तो बड़ा मुश्किल से कमरे में पहुंचा वो, सुखदाम ने उसको दी एकोमोडेशन। तो वहां पहुंच गया तो भोजन करने नहीं आया वो, तो वहां पानी वानी पी के फिर माँ बेटी ने तो भोजन किया दोपहर का, फिर चले गए। फिर शाम को वो चले गए पीस पार्क घूमने के लिए। तो पीस पार्क गए तो वहां गाड़ी उन्होंने खड़ी कर दी, तो जो बाहर का शीशा था कार का, तो बस आकर उसको टकरा गई और शीशा टूट गया, वो 20-25 हजार का शीशा होगा, उसमें नुकसान हो गया। तो भाई का और ही मन खट्टा हो गया, एक तो पहले से वो एंटी, दूसरा और मन खट्टा हो गया उसका। तो वहां से पीस पार्क से वापस लौटे और फिर कमरे में चला गया और सुखधाम में। तो फिर हम यहां से उसको भोजन लेकर गए, क्या लेकर गए थे, बाबा की जो कड़ी बनी थी, जो लेट आए थे तो हम कड़ी और खिचड़ी ले गए, बस दोनों चीजें। तो तुम यहां से लेके गए तो पहले तो उसको थोड़ा बताया इसके यहाँ के बारे में, तो उसने बड़े भारी मन से खाई कड़ी खिचड़ी, लेकिन थोड़ा तो मन तो है कि भी हमारे लिए कमरे में लेके आए, फिर थोड़ा रिगार्ड रख लिया उन्होंने भी खा लिया। फिर बोला ये ब्रह्मा बाबा का ये फोटो इधर क्यों लगाया, ये तो शरीर छोड़ दिया तो भूत है, इसको क्यों फोटो लगाया इधर ही। तो मैं बोला भूत नहीं है ये ये अव्यक्त हुए हैं, इन्होंने शरीर छोड़ दिया है, पुराना शरीर छोड़ा है, लेकिन ये अव्यक्त हैं। इसको समझने के लिए आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, और यहाँ संसार की तरह कोई देहधारी गुरु नहीं है, यहाँ स्वयं भगवान का अवतरण होता है, भगवान का ही ज्ञान है, यहाँ कोई गुरु चेले की परंपरा नहीं है कोई भी। तो सारा थोड़ा उसको समझाया, थोड़ा बहुत हमने 10-15 मिनट ज्ञान चर्चा की, जितना आता था हमको बताया, फिर हम वहां से वापस लौट आए। तो बोला मैं सवेरे चला जाऊंगा, मैं बोला जी ठीक है नाश्ता करके चले जाऊँ, बोला मैं नाश्ता वास्ता करूंगा। तो माँ बेटी तो ठीक थे, माँ थोड़ा पक्की थी एकदम, तो सवेरे उठे वो, तो जैसे तैसे करके उसको मना के वो माँ बेटी ले आए नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ डाइनिंग हॉल में नाश्ता करने बैठ गए, तो नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मुझे बोलता है कि उस मुझे रात को एक सपना आया, इस सपने का अर्थ क्या है। मैं बोला क्या सपना आया, बोला रात को ना एक रथ आया ऊपर से, 5 घोड़ों वाला रथ आया, और मैं उसमें एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ, ये ब्रह्मा बाबा लगाम लेके, और रथ नीचे आया और मुझे उसमें बिठाया और मुझे ऊपर ले गया। वो बोला मैं बहुत ऊपर चला गया जैसे, तो बोला ऊपर जाके देखा कि ऊपर ना एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ, और उस यज्ञ में एक माता जी बैठी है खुले बालों वाली, और उसमें आहुतियां पड़ रही हैं, बहुत सारे लोग आहुतियां डाल रहे हैं, और भावत बाबा वहां पहुंच गया और वहां हम उसको देख रहे हैं। तो बोला इसका अर्थ क्या हुआ, तो हम तो अपने तरीके से, मैं पता नहीं कौन सी माता जी देखे इन्होंने। तो हमने बोला ये 5 कर्म इंद्रियों जो हमारे घोड़े होते हैं, और इसको हमको अपने मन की लगाम से इसको कंट्रोल करना होता है, इसमें हमको बुराइयों की आहुति देनी होती है। तो इसने उसको रात को ये ओम शांति उनमें 5 कर्म इंद्रियों वाले चित्र वो दिखाया था, हमने सोचा इसका सपना आ गया होगा इसको, लेकिन बोला सपना तो जरूर है लेकिन मैं मानने वाले नहीं इसको, क्योंकि मुझे पता मैं यहाँ का भोजन खाया ना इसलिए सपना आया यहाँ का ये, लेकिन मैं मानने वाला नहीं इसको। तो खैर जी मैं कोई बात नहीं, मानने ये तो जिंदगी मौज से जियो, आप भगवान ने जिंदगी दी है, आप टेंशन मत लो, आप इस ज्ञान को समझो ही नहीं, कोई बात नहीं आप मजे से घूमो फिरो खाओ पियो माउंट आबू या एंजॉय करो, आप ले जाओ, ज्ञान का क्या करना आपको, ज्ञान की कहां जरूरत है आपको, आप तो वही बहुत खुश। तो खैर जी कुल मिलाकर वहां से नाश्ता किया उन्होंने, फिर वहां से वापस यहां शांति स्तंभ देखने के लिए यहां पर, तो यहां खड़ा हुआ, यहां खड़ा होने के बाद शांति स्तंभ देखा, तो शांति स्तंभ के जैसे उसने उधर देखा जो लाइट है उसकी सीढ़ियां, तो वहां उसको बाबा दिखाई दिया, हमको तो कभी दिखाई नहीं दिया अभी तक भी, लेकिन बाबा इधर ही अभी भी। तो वहां उसको बाबा दिखाई दिया सफेद कपड़ों में। अच्छा फिर वहां उसने वो बात नहीं मुझे उसने बताई, फिर वहां से वापस आया, फिर यहां से ले गए, तो फिर बाहर जाके गेट के पास खड़ा हुआ, तो फिर उसको सामने बाबा दिखाई दिया, और उसको वहां से आवाज सुनाई दी कि मैं अभी गया नहीं हूं, मैं यही हूं, और जब तक इस यज्ञ का काम पूरा नहीं हुआ मैं यही रहूंगा, मैं हर बच्चे की एक्टिविटी को देखता रहता हूं, कोई ये ना समझे नहीं दिख रहा है। तो उसने बाहर वाले जिसको ज्ञान नहीं है उसको सारा बाबा बता रहा है, तो बताओ हमारे ऊपर बाबा की कितनी दृष्टि होगी। तो ऐसा नहीं हम सोचे कि हम क्या सोच रहे हैं, या हम कर्म कर रहे हैं, या कमरे में बंद बैठ के व्हाट्सएप चला रहे हैं, क्या बाबा हर एक एक्टिविटी को देख रहा है, वो इधर ही है अभी भी, जो बाहर वाले अनुभव कर रहे हैं। तो क्या हम उसको यहां अनुभव कर रहे हैं, क्या हमारी एक्टिविटी ऐसी है, या कहीं हम अपने विवेक का खून तो नहीं कर रहे हैं। जिस यज्ञ के वायुमंडल को शुद्ध बनाने की हमारी जिम्मेवारी है, जिन दादियों ने जिन दादाओं ने यहां तपस्या की है, सृष्टि के आदि पिता ने यह साधना की है, उस वायुमंडल को हमारे पुरुषार्थ को पंख लगाने के लिए इतना अच्छा बनाया है, क्या हम उसका फायदा ले रहे हैं। तो हमेशा हमको यही अनुभव करना है कि बाबा सचमुच हमारे साथ में है, अपने मन को भारी नहीं करना है। वो इसलिए बाबा कहते हैं साथ हूं साथ रहेंगे साथ ही चलेंगे, तो हमारे साथ में है। फिर उसके बाद वो भाई ने तो बताया मैं अभी एक दिन और रह सकता हूं, पहले तो जाने वाला था, तो हमने फिर चंद्रशेखर भाई को रिक्वेस्ट करके एक दिन और रुक गया वो। फिर उसने हमको सारी ना अपनी हिस्ट्री सुनाई, तो बोला मेरी इतनी फैक्ट्री है लेकिन मुझे बहुत घाटा हो गया है। तो बोला मैं भी क्या करूं, तो मतलब कोई नहीं आप बाबा को पत्ता लिख के जो भी है ना आप बाबा को पत्ता लिख के बाबा की उधर कमरे में डाल दो अपनी जो भी कंप्लेंट है। तो उसने क्या किया, वो सारी फैक्ट्री के जो पैम्पलेट वैम्पलेट तो सारा इकट्ठा करके वहां ही रख दिया उधर। बाबा कहता, बाबा फैक्ट्री वैक्ट्री जो भी है सब काम आपका है, जो भी करना आप करो। अब वो उसकी माता आती, वो तो उसके बाद नहीं दिखा मुझे, लेकिन हर साल उसकी जो सास है वो आती है और हर साल कुछ ना कुछ वो ग्लोबल के लिए या कुछ ना कुछ यज्ञ के लिए भेजता। तो देखो जो बाहर का व्यक्ति है, तो इसलिए बाबा ने कहा जो सहयोगी हैं, सच्चे सहयोगी हैं, वो योगी बन जाएंगे। तो उन आत्माओं का भी धीरे 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 पुण्य बढ़ता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, क्योंकि उसने सच्चे मन से उसको स्वीकार कर लिया कि सचमुच यही है। तो बोला पहली बार, बोला मैं बहुत सारी संस्थाएं घुमा हुआ, तो बहुत सारे के मुझे जहां भी जाता हूं खाने पीने के बाद ये चीजें हमको अनुभव होती हैं, लेकिन यहां आके जो हुआ, जो जागृत अवस्था में हुआ, स्वप्न तो रात वाला हुआ अलग, हाँ उसने बोले सपने वाला देखा, फिर उसने मम्मा का चित्र देखा, तो बोला ये माता जी ऊपर बैठे हुए थे यज्ञ में होते डालने के लिए, और बहुत सारे लोग माना ब्राह्मण बैठे हो तो जो यज्ञ में होती डाल रहे हैं, अर्थात ऊपर दादियां दिखी होंगी जो एडवांस पार्टी वाले गए हुए सब। तो वो सब चीजें जो बाहर का व्यक्ति कर अनुभव कर रहे हैं, तो हम आत्माओं को उस अनुभूति में कितना खो जाना चाहिए। जो भी हमारे यज्ञ की आधार मूर्तियां हैं, यज्ञ के आधार स्तंभ हैं, जिनकी तपस्या के फलस्वरूप आज हम इतना अच्छा ज्ञान का मक्खन खा रहे हैं, जिनके होते हुए ज्ञान था ही नहीं इतना क्लियर, थी इतना कोई लिटरेचर, आज तो हमको इतना लिटरेचर पढ़ने के लिए है, वो पढ़ने के बावजूद भी हमारे मन में प्रश्नों के हम बार लगे रहते हैं। प्रश्न हम उस तरह से करते हैं जैसे हमने सारा ज्ञान वो पढ़ लिया है और ये प्रश्न इससे बाहर का है। हर प्रश्न का जो उत्तर है सारा मूल्य में है। तो बाबा ने हमको इतना ज्ञान सुसज्जित किया है, उस ज्ञान से हम अपना श्रृंगार कितना करते हैं, रोज स्वयं को कितना अटेंशन रखते हैं। तो हमको तीव्र पुरुषार्थ की जो चाहना है, तो सरल मार्ग हमको खुद ही क्रिएट करने हैं। बाबा की जीवन कहानी पढ़ें, बाबा से बातचीत करें, अपना चार्ट रखें, चलते फिरते अनुभव करें। बाबा ने कहा जो चलते फिरते अपने को फरिश्ता समझो, क्योंकि हमारा जो जीवन है, एक है सवेरे शाम वाला योग, वो तो ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से पहले हम जिक्र करते हैं, जिक्र हम भी यही प्रयास करते हैं कि जो हमारे बीच का पीरियड है, मुरली के बाद का और शाम को योग से पहले का, ये हमको अब अच्छा करना है। और घर में भी यही प्रयास रहना चाहिए, क्योंकि सवेरे शाम का तो ठीक है हम थोड़ा किनारे हो जाते हैं, लेकिन बीच का पीरियड ये हमें अप्रभावित रहे, कोई प्रभाव ना पड़े उसका हमारे ऊपर, क्योंकि उस पीरियड के अंदर अगर हमें प्रभाव हो गए, प्रभावित हो गए उस समय, हम तो हमारा सवेरे और शाम का भी इतना पावरफुल नहीं होगा, तो बाबा के साथ का अनुभव कैसे होगा फिर। इसलिए जो बीच का पीरियड है, चलते फिरते हमें तीव्र पुरुषार्थ, अर्थात चलते फिरते भी, उठते बैठते खाते पीते, वो हमारा जीवन है, नेचुरल योगी जीवन होना चाहिए, वो हमारा प्रयोगशाली जीवन होना चाहिए, नेचुरल हमारी कर्मेंद्रियां अनुशासित हो जानी चाहिए, उनको करना ना पड़े। जैसे अगर नया रास्ता बनाना होता है तो दो चार बार चलना पड़ता है, फिर तो रास्ता बन ही जाता है उसके ऊपर, फिर सबको दिखता है ये रास्ता जा रहा है। उसी तरह हमारा ब्राह्मण जीवन भी है, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो दूसरों को स्वतः दिख जाएगा कि ये कौन सी स्मृति में है, ये योग की स्मृति में है या वियोग की स्मृति में है, तो नेचुरल हो जाएगा। रास्ता धीरे धीरे तैयार करना पड़ता है, फिर नेचुरल हो जाता है। कर्त करता ब्यास के जन्म से उस जान, तो हमारा नेचुरल जीवन है, खुशियों से भरा जीवन है। आज ही बाबा ने कहा ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो, हाँ, तो ऐसे जो भी शब्द आए तो मुरली से तुरंत कनेक्ट हो जाना चाहिए। जैसे खुशी शब्द आया तो आज की मुरली में क्या था, आज की मुरली में इसके बारे में भी था, क्या था, बैज पड़ा होना चाहिए, इसके ऊपर भी तुम सर्विस करते दो, इसमें भी दो है, कौन, बाबा ने कहा इस बैज में भी दो है, कौन है दो, लक्ष्मी नारायण, और तुम ये बनेंगे, ये माना क्या, हाँ ये लक्ष्मी नारायण, बाबा यहाँ हाथ करते होंगे ना इधर, इमेजिन करो यहाँ बाबा बैठे और ये बनेंगे। ओ उस सीन को भी देखो, कैसा वो सीन होगा, मम्मा बाबा बैठे हैं, सामने बच्चे बैठे हैं, है ना, ओम शांति।